તારીખ 23-8-1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 690.
રાજચંદ્ર વચનામૃત 8-200 ચલતા હૈ પૃષ્ઠ સંખ્યા 262. જ્ઞાની પુરુષ કા અદ્ભુત માર્ગ દર્શાવને કે હેતુ યે પત્ર લિખા ગયા હૈ. पत्र का विषय है ज्ञानी पुरुष का मार्ग क्या है. ज्ञानी पुरुष का मार्ग कहो या तीर्थंकर देव का मार्ग कहो, एक ही बात है. फिर भी तीर्थंकर देव का मार्ग ऐसा नहीं कह करके ज्ञानी का मार्ग कहने का पीछे प्रयोजन क्या है. दो मार्ग तो हो ही नहीं सकता. जिस मार्ग से तीर्थंकर देव चले वही मार्ग से ज्ञानी चलते हैं. फिर भी ज्ञानी का मार्ग कहने के पीछे हेतु है कि तीर्थंकर देव के नाम से अलग अलग संप्रदाय चलते हैं. वर्तमान में इस पंचम काल में शुरू में तो एक ही संप्रदाय था, वो दिगंबर संप्रदाय था. लेकिन जब तक श्वेतांबर नहीं निकले थे तब तक दिगंबर नहीं कहते थे. सनातन मार्ग तीर्थंकर देव का सनातन मार्ग कहते हैं. बाद में विभिन्न संप्रदाय बनने लगे, निकलने लगे और दिगंबर संप्रदाय में भी कुछ विकृतियां आ गई. क्या हुआ, श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में तो मूल मार्ग नहीं है लेकिन दिगंबर संप्रदाय में भी बहुत सी विकृतियां आ गई है. तो तीर्थंकर देव का मार्ग नहीं रहता फिर, इसलिए ये कहा कि ये ज्ञानी का मार्ग है जिस मार्ग से तीर्थंकर देव चले हैं, कहने का अभिप्राय वो. अभी शांति रखें. तो ज्ञानी के मार्ग में और सांप्रदायिक जैन धर्म में अंतर क्या है, फर्क क्या है. इस संप्रदाय में जो है संप्रदाय में त्याग प्रधानता है. पाप छुड़ा करके पुण्य के परिणाम का उद्देश्य दिया जाता है और पुण्य कराने के लिए त्याग कराते हैं और त्यागी लोग त्याग का उपदेश देते हैं. ज्ञानी के मार्ग में पुण्य पाप रहित मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ होता है और मोक्ष मार्ग तक कैसे पहुंचा जाता है, ये सब बातें ज्ञानी के मार्ग की. शास्त्र भाषा से कहे तो चारित्र मोह के परिणाम में जो राग होता है इसकी मंदता कराने के लिए संप्रदाय में उपदेश चलता है, और ज्ञानी का उपदेश में दर्शन मोह को मंद करके इसका अभाव करके मोक्ष मार्ग में प्रारंभ प्रवेश करने का उपदेश चलता है। इस प्रकार दो में फर्क है। ज्ञानी का मार्ग है वही सन्मार्ग है, और ज्ञानी के मार्ग को छोड़ करके जो भी मार्ग हो, कुछ भी नाम दिया जाए, उन मार्ग है, सन्मार्ग नहीं है। क्या है? उन मार्ग है, सन्मार्ग नहीं है। इसलिए ज्ञानी ही सूत्र की प्ररूपणा यथार्थ रूप से करते हैं, अज्ञानी उत्सूत्र प्ररूपणा करते हैं। क्या करते हैं? उत्सूत्र प्ररूपणा होती है। और आनंद घन जी ने गाया कि पाप नहीं दूसरो उत्सूत्र प्ररूपणा सरीखो। उत्सूत्र प्ररूपणा जितना कोई बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि उसमें सिद्धांत की विपरीतता उपदेश में दिए जाती है, और ये निगोद का कारण बनती है। क्या? भले ही उसमें पाप छुड़ाते हैं, फिर भी उसका फल निगोद है। ऐसा है। वो कुंदकुंद आचार्य ने दर्शन पाहुड़ में वो बात लिया है, निगोदम गच्छे ही, निगोद में चले जाएंगे वो लोग। तो ये 200 नंबर के पत्र में ज्ञानी का मार्ग, ज्ञानी का अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया है, ऐसा स्वयं ने 201 नंबर के पत्र में स्पष्टीकरण दिया है। तो तीसरा वचनामृत चलता था कि जो अज्ञान है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही मिटता है, अज्ञान का नाश होता है, और ऐसा आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी से ही होनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति बिना ज्ञानी हो नहीं सकती। किन काल में? कोई अज्ञानी ज्ञानी की बात सुनकर ऐसी बात कहने को सीख लेता है और ऐसा ही उपदेश देता है, फिर भी ऐसे अज्ञानी की वाणी से या अज्ञानी से, अज्ञानी के निमित्त से किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, यह स्वाभाविक समझ में आता है। यह सामान्य बुद्धि से भी समझ में आ जाए ऐसी बात है। क्यों? कि जिस कुएं में पानी नहीं होता उसका अवाड़ा में पानी नहीं आता। हिंदी में अवाड़ा ही कहते क्या? होज, होज कहते हैं। कुएं में पानी नहीं है तो होज में, अवाड़ा में पानी नहीं आ सकता। इसको जिसको ही आत्मज्ञान नहीं है वो आत्मज्ञान की बातें सुन करके कोई बात कर दे, इससे किसी को आत्मज्ञान हो जाए, खुद को ही नहीं होता है दूसरे को कहाँ से होगा। इन बातों से, इन समझ से खुद को ही नहीं हुआ तो दूसरों से, दूसरों को तो कहाँ से होगा, तो हो ही नहीं सकता। वो सामान्य स्वाभाविक रूप से समझ में आता है, फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारणों से, कल चल गया था, थोड़ा फिर से लेते हैं। हमारे सगे संबंधी संप्रदाय में जाते हैं और हम जाना बंद कर दें, हाँ हमारी टीका टिप्पणी हो जाएगी। लोग में हमारी प्रतिष्ठा बहुत है और हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है, इसलिए हमको जाना पड़ता है। क्या करें, बात थोड़ी तकलीफ वाली वहां होती है। कैसे पर्युषण के दिन आते हैं या कोई तपश्चर्या कर लेते हैं, सांप्रदायिक तपश्चर्या, वो तपश्चर्या है नहीं, और फिर उसका उत्सव मनाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, तपश्चर्या के बाद हैं पारणा, रात्रि जगा और बुढ़िया पालना चलता है, क्या चलता है, और अपने कहते हैं ना भाई, हाँ कई प्रकार के प्रसंग आते हैं और आमंत्रण देते हैं, और क्या है कि लड़की के ससुर उपवास किए हो, क्या हमारे लड़की के ससुर ने उपवास किए हो, हैं बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, प्रतिष्ठित हो, और आमंत्रण भेजे कि आपको तो हमारे यहाँ प्रसंग बहुत बड़ा है, हमारे गुरु साधु संत आने वाले हैं और गांव के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, आप नहीं आएंगे तो पूछेंगे हम लोग, हमको लोग कि क्या कोई तकरार हो गई विवाही से, हाँ आपके विवाही क्यों नहीं दिखते, कोई आपस में कोई लड़ाई तो नहीं हुई, हाँ ऐसे नहीं आओगे तो चलोगे, चलेगा, लेकिन इस प्रसंग पर तो आना ही होगा, अब जाना कि नहीं जाना, हाँ उनको बुरा लग जाए, दुख लग जाए, हाँ माठू लगे तो जाऊँ कि न जाऊँ, डॉलर में अच्छा ना हो जाए, नाम वाँचू तो मगन भाई ना दीकरा नाम वाँचू तो छापा मार, हाँ कई घोड़ा पा घोड़िया पाना नो तो घोड़िया पाना, हाँ बोलिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नहीं गए अच्छी बात, नहीं जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या हम संबंध बिगाड़ दें, हैं वही विवाह आपका लाख दो लाख पांच पच्चीस लाख रुपया छेतरपिंडी करके ले जाए तो संबंध बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, हैं बोलने का व्यवहार नहीं रखोगे, तो हमारे साथ दगाबाजी किया और हमारा 50 लाख डूब गया, हाँ झूठ बोल करके ले गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा पैसों के मामले में हम शर्म नहीं रखते, रखते क्या, वो भी नहीं रखेंगे, हाँ? हम भी नहीं रखेंगे, पैसों की कीमत है, लेकिन हमको हमारे आत्मा में नुकसान होता है, आत्मधन आत्मा की संपत्ति चली जाती है, वो नुकसान हमको दिखता नहीं है, जो धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं, उनकी अनुमोदना हमारे से हो जाती है, क्या होता है, करना तो नहीं चाहिए, कराना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनुमोदना भी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, करना कराना और अनुमोदना तीनों का एक फल है, तीनों का
एक ही फल है, तो उसकी जो गति होगी वो हमारी हो जाएगी, पर उसमें से कोई छुड़ाने वाले आएंगे नहीं। दुर्गति में से कोई, समाज में से कोई छुड़ाने आते हैं क्या कि नहीं आएंगे? इसलिए पहली वक्त थोड़ा मन दुख होता है, फिर वो भी समझ जाते हैं कि भाई उसको समझ ज़्यादा है, हम तो बिना समझे ये सब कुछ करते हैं, ये कुछ ज़्यादा समझते हैं, चलो अपने को माथा नहीं लगाना है उसको, कुछ जो कुछ करते हैं सोच समझ के करते हैं, बिना समझे नहीं करते हैं। फिर भी लोक लज्जा आदि कारणों से अज्ञानी का आश्रय छोड़ता नहीं, अज्ञानी का अनुसरण छोड़ता नहीं, अज्ञानी की बात को करकारित अनुमोदना से अनुसरण करता है, वही अनंतानुबंधी कषाय का मूल है। देखो पुण्य करता है फिर भी अनंतानुबंधी कषाय का मूल है। अनंतानुबंधी कषाय का मूल, इसका मतलब यह है कि चार गति में परिभ्रमण करने का मूल। अनंतानुबंधी कषाय का फल क्या है? परिभ्रमण। अगर हमको परिभ्रमण का दुख भोगना है तो लोक लज्जा में रहना, वरना लोक लज्जा को उड़ा देना। क्या करना? उड़ा देना। हाँ, छोड़ देना, इसमें क्या है? फर्स्ट टाइम लगेगा, बाद में तो एक इंप्रेशन बन जाएगी कि भाई वो तो ऐसा ही है, चलो अपने को इसके इस कारण से अपने को संबंध बिगाड़ना नहीं है, वो भी नहीं बिगाड़ेंगे। हाँ, वो तो उपवास करता है, वो करता है तो पूर्ण भाव तो करते हैं, संप्रदाय के परिणाम में तो भले रूढ़िगत है लेकिन मंद कषाय होता है तो पुण्य होता है ना, लेकिन वो अनंतानुबंधी कषाय का मूल है। हाँ, जो मोक्ष का मार्ग नहीं है, बंध के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझते हैं, विपरीतता है, और विपरीतता का फल क्या है? तिर्यंज गति और निगोद गति। हाँ, उनकी जो गति होगी अपनी, कृतकारित अनुमोदना का एक ही फल है, वो करता है तो आप अनुमोदन करते हो, बात तो एक सी होगी। हाँ, ज्यादा होता है अनुमोदना का दोष, करने से भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें अभिप्राय शामिल होता है तब अनुमोदना होती है। करने में तो अभिप्राय विरुद्ध भी कोई परिणाम हो सकता है, लेकिन अनुमोदना में तो अभिप्राय पूर्वक ही होता है, इसलिए अभिप्राय का अनुमोदना का दोष है वो अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है। हाँ, और छिपा दोष है तो मालूम नहीं पड़ता, बात तो ऐसी है। धार तर वारनी सोहली दोहली चौदमा जिनतनी चरण सेवा, ये बात इतनी सोहली नहीं है, दोहली है लेकिन जन्म मरण का नाश कराने वाली है। बहुत यहाँ से दिखाने वाले हैं, मानो कि कोई शोरका खाते हैं, वहां एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, ऐसा मान करके हमने व्यवस्था की है। क्या ऐसा मान करके व्यवस्था हमने की है, इसलिए कोई उल्टी मान्यता के साथ हमारा अनुमोदन को नहीं समझे, नहीं माने, स्पष्टीकरण दे दें। इसमें क्या है, हमारे गुरुदेव वाले मुमुक्षु लोग भी कभी उपवास करते हैं, पर्युषण में 10 उपवास कर लेते हैं, 10 लक्षणी पर्वों में, फिर पालना वगैरह की बात चलती है। एक बार मुंबई में थे, मलाड में, हमारे नीलेश भाई ना भाई कह रहा था 10 उपवास, और तुम्हारा थे पावन कराओ और तुम्हारा थे इनाम दो, ठीक। तो फेरो भी देखो, ये तपश्चर्या नहीं है, तपश्चर्या मानना ग्रहित मिथ्यात्व है, सब स्पष्टीकरण दिया, ऐसा समझ लेना। बाकी ये रूढ़ी जो है ठीक है, आपने बोला तो हम दे देते हैं, बाकी तपश्चर्या मान करके बिल्कुल नहीं। सबों के बीच में स्पष्ट कर दिया, ये तपश्चर्या है ही नहीं। तपसा निर्जरा च, उमा स्वामी ने क्या कहा, तपसा तपस्या से तो निर्जरा होती है, और ये तो पुण्यबंध होता है, और हम अहम भाव करे तो पाप भाव होता है। मैंने तपस्या की, अहंकार किया, अहंकार से पाप भाव होता है, और धर्म मानने से मिथ्यात्व का पाप होता है, धर्म का कारण मानने से मिथ्यात्व का पाप होता है। इसलिए ज्ञानी का मार्ग अलग है, संप्रदाय से ज्ञानी का मार्ग अलग है बिल्कुल, और वही मुक्ति का मार्ग है। संप्रदाय में वो चीज आज आजकल है ही नहीं। अब कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जिसको चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति की जिसको इच्छा हो, उसको ज्ञानी की इच्छा से वर्तन करना, ऐसा जिनागम आदि सर्वशास्त्र कहते हैं। मैं कहता हूँ बात नहीं है, जिनागम भी वही, सर्वशास्त्र वही कहते हैं कि जिसको ज्ञान प्राप्ति चाहिए उसको ज्ञानी की आज्ञा में रहना, ज्ञानी की इच्छा के अनुसार वर्तन करना, परिणमन करना, अनुचरण करना, ज्ञानी की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। अपनी इच्छा से प्रवर्तते हुए अनादिकाल से जीव ने परिभ्रमण किया है, जीव संसार में भटका है। वो भटकन कहाँ से हुई कि अपनी इच्छा से प्रवृत्ति किया। धार्मिक क्षेत्र में अपनी इच्छा से प्रवृत्ति नहीं चलती। हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं तो अपनी इच्छा से दवाई लेते हैं क्या? वहां तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, काटते हैं शरीर को, शरीर के अंग को काटते हैं, और काटने का पैसा देना पड़ता है। यहां तो कुछ देने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी मांगते नहीं, और मांगे वो ज्ञानी होते नहीं। तो यहां तो वो बात है ही नहीं, फिर भी वहां डॉक्टर की इच्छा के अधीन अगर ठीक होना है तो चलना पड़ता है। वो बोले कि सो जाओ, बेड रेस्ट में उठना नहीं है, सोना पड़ेगा, ICCU में ले जाएंगे, इंसेंटिव केयर यूनिट। आपको आपके नज़दीक के प्रियजन के साथ भी मिलना जुलना बात करना नहीं देंगे, अरे मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्यों? कि देखने से आपका फीलिंग बढ़ जाता है, इमोशनल पोजीशन हो जाती है क्या। और हार्ट के पेशेंट के लिए इमोशनल पोजीशन खतरनाक है क्या नहीं? હાર્ટ પેશન્ટ છે ને એનો 14 નુકસાન ઇમોશન્સથી થાય છે, કેટલા 14 નુકસાન, 2 આની ફિઝિકલ કારણ છે એમાં। એક અમેરિકન કાર્ડિયોલોજિસ્ટ કા કિતાબ પઢા થા, તો ઇનકો ઇન્સેન્ટિવ કેર મેં ક્યો લે જાતે હૈ, તો અપને પરિવારજન કો દેખતે હૈ તો ઉસકો લાગણી હો જાતી હૈ, ઇમોશનલ હો જાતા હૈ, હાર્ટ પર પ્રેશર આતા હૈ, हार्ट फेल होने का सवाल खड़ा हो जाता है। तो ले जाते हैं वहाँ, नहीं मिलने देंगे, नहीं बात करने देंगे, और वो मंजूर करना पड़ता है, और इस तरह से सजा भोगने का पैसा देना पड़ता है। ऐसी सजा भोगने का पैसा देना पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं देना पड़ता है, तो स्पेशल यूनिट है। यहाँ कहते हैं कि आप परिवार के प्रति ममत्व मत करो, तो मानता नहीं है, वो कैसे चले। हाँ, लागनी तो हो गई ने, पर परिवार वालों के प्रति लागनी नहीं होगी तो किसके प्रति होगी। तो कि ये तो एक बार हार्ट अटैक आता है, वो अनंत बार हार्ट अटैक आएगा, फिर क्या होगा, अनंत जन्म मरण, अनंत बार हार्ट अटैक का प्रसंग बनेगा। लेकिन जितनी डॉक्टर की मानता है उतनी गुरु की नहीं मानता है, तो परिभ्रमण होगा ही होगा। अपनी इच्छा से मनमानी करने से या मनमानी पद्धति से धर्म करने से, धर्म क्रिया करने से अनंत काल से जीव संसार में भटकता है। पाप करता है इसलिए संसार में भटकता है ऐसा नहीं बोला, अपनी इच्छा के अनुकूल स्वच्छंद से धर्म करता है तो परिभ्रमण करता है, ये ज्ञानी का मार्ग की बात है। अब आगे कहते हैं कि जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा से मैंने आज्ञा से, इच्छा माने आज्ञा लेना, नहीं वर्तने में आएगा वहां तक ज्ञान की निवृत्ति होनी संभवित नहीं है। अब क्या कहते हैं कि शास्त्र में जो बात लिखी है वो भी ज्ञानी की आज्ञा है, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति के लिए वो बात नहीं चलती, उसमें प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए। देखो क्या लिखते हैं फिर से, जब तक प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा से यानी आज्ञा से नहीं वर्तन, आत्मिक शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी बन जाए वो बात कभी बनने वाली है ही नहीं। क्यों? कि शास्त्र में लिखी हुई बात वो व्याख्या है। क्या है? व्याख्या, डेफिनेशन। और प्रत्यक्ष ज्ञानी में प्रयोग कैसे किया जाए वो बात चलती है, प्रयोग का विषय लिखा लिखने में नहीं आता, आता है क्या? रोटी बराबर बना के लिए बेलन को घुमाना, कैसे घुमाना, तो वो कोई लिखने की चीज नहीं होती। बोलो लिख दो कि भाई बैलेंस रख के घुमाना, लेकिन बैलेंस कैसे रखना? बैलेंस रखना वो कोई लिखने की चीज नहीं है, बोलने की तो चीज नहीं है, वो तो बताने की चीज है। तो देखो हम घुमाते हैं, तुम जरा देखो, गौर से ध्यान से देखो, उतना ही नहीं, तुम खुद ही प्रैक्टिस करते जाओ तभी पता चलेगा कि यहाँ रोटी मोटी हुई और छोटी हुई, पतली हुई या मोटी हुई। सोच है पहले खुल गई, क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज की होती है, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञानी के बिना न कोई समझा सकते हैं न कोई समझ भी सकते हैं। ऐसी कोई सूक्ष्म बातें प्रयोग के विषय की हैं, बीज का चंद्र सूक्ष्म होता है, आप लिख के बता दो या बोल के बता दो कि ऐसे उसका बीज का दर्शन ऐसे करना है, अंगुली निर्देश करना पड़ता है क्या कि देखो मैं उंगली से तुमको दिखाता हूं, तो क्या देखेगा? पहले उंगली को देखेगा तो कह नहीं, जहां तक उंगली को देखते रहोगे बीज नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी क्या? और बिल्कुल उंगली को नहीं देखोगे तो भी बीज नहीं दिखाई देगी। देखो क्या बात है, कैसी उटपटांग बात है। उंगली से बीज दिखाई जाती है, उंगली को देखना भी है और उंगली को नहीं देखना भी है, दोनों बात है। ऐसी बात है, ज्ञानी कहेंगे, अनुभव प्रकाश में बहुत अच्छी पद्धति है दीपचंद जी साहब की, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड से लिखते हैं कि देखो ये जो ज्ञान है वो तो तुम्हारे प्रदेश में से उठता है, ज्ञान इंद्रियों से होता है ऐसा नहीं बोला, मन से होता है ऐसा नहीं कहा, आत्म प्रदेशों में से ज्ञान उठता है, वो भी तुम देखो विचार करो वो बात नहीं किया। और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, देखो तुम देख के इस बात को समझो, तो बात सुनेगा भी पढ़ेगा भी और वो सुनकर पढ़ कर के फिर देखेगा, सुनना से आगे चलना पड़ता है। मैंने विचार ज्ञान से प्रयोग का विषय अनुभव का विषय एक कदम आगे है, वन स्टेप फर्दर। हम पढ़ करके सुन करके विचार करते हैं, अब इससे एक कदम आगे बढ़ना है हमको, तभी प्रयोग होगा, क्योंकि ये आत्मज्ञान है वो अनुभव ज्ञान है, स्वानुभूति स्वरूप है, और वो केवल विचार से प्राप्त नहीं होता। विचार की मर्यादा में इसकी उपलब्धि नहीं, स्वानुभूति की उपलब्धि नहीं है, आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं है। ऐसा होने से प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए। वो बात जिसको समझ में आती है कि प्रत्यक्ष ज्ञानी के बिना मेरा परिभ्रमण का छुटकारा होने वाला है ही नहीं, वो ज्ञानी को ढूंढे बिना रहेगा नहीं। और लोक लज्जा आदि कारण से अज्ञानी का संग नहीं छोड़े ऐसा बनेगा नहीं। लोक लज्जा को फेंक देगा, क्या करेगा, फेंकेगा। हमको ये परिभ्रमण का कारण नहीं चाहिए, हमको प्रत्यक्ष ज्ञानी हर हालत में चाहिए, चाहिए और चाहिए। ऐसी जहां तक समझ में बात नहीं आती वहां तक वो ज्ञानी के बात को अनुसरण करने की बात, अंगीकार करने की बात तो आगे की होती है, क्योंकि कईयों को प्रत्यक्ष ज्ञानी मिलने के बावजूद भी वो उनकी आज्ञा को अंगीकार करते नहीं है। और आज्ञा में आते ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसके सिवा निवृत्ति होती नहीं है। छठवां वचनामृत, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन भाव कर सकता है। अब क्या कहते हैं, ज्ञानी की आज्ञा का आराधन कौन कर सकता है, आज्ञा में कौन रह सकता है? कि जिसको एक निष्ठा होती है, एक निष्ठा मैंने निशंकता, पूर्ण विश्वास, उसको कहते हैं एक निष्ठा। पूर्ण विश्वास पूर्वक तन मन धन की आसक्ति का त्याग, और उस त्याग पूर्वक भक्ति में जुड़ना, तीन बातें लिया है। एक निष्ठा वाली बात है, दूसरी आसक्ति छोड़ने की बात है, तीसरी बात है भक्ति की। तीनों का कोऑर्डिनेशन होने से ही ज्ञानी की आज्ञा में रह सकता है। तीन में से एक की भी क्षति होती है, ज्ञानी की आज्ञा में नहीं है। ये दूसरे ढंग से चलता है। एक निष्ठा मैंने पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास माने क्या, कि निशंकता, कहीं भी शंका नहीं हो, वो इसको कहते हैं एक निष्ठा है। किसी भी प्रकार के ज्ञानी के भी उदय भाव तो होते हैं। रामचंद्र जी को आज हम मानते हैं, लेकिन इसके जमाने में हम थे और माने नहीं थे समझ लेना, बहुत मुश्किल वाली बात है। क्यों, कहीं ना कहीं शंका हो जाती है, एक निष्ठा नहीं रहती। और वो निष्ठा भी इस प्रकार की है कि मेरा पलम परम कल्याण का एक कारण है, उसकी भी एक निष्ठा। दो बात साथ में होती है निष्ठा में, अपना आत्म कल्याण का भी पूर्ण विश्वास और ज्ञानी होने का भी पूर्ण विश्वास। उतना ही नहीं, ऐसा होने के कारण से इनके सानिध्य से और इनके वचनों से हमारे आत्मा पर आत्मकल्याण के दिशा में जो भी असर पहुंचती है, क्या असर पहुंचती है, जैसे भी वो असर के कारण से उपकार बुद्धि वशात भक्ति आती है। ऐसे भक्ति देखा देखी से आने वाली बात नहीं है कि बहुत लोग भक्ति करते हैं तो हम भी करें। अपने आत्मा पर कल्याण होने का एक कारण देख करके उपकार होता है, उपकार देख करके भक्ति आती है। और वो भक्ति का झुकाव ऐसा होता है कि तन मन धन की आसक्ति छूटती है। पहले लिया है तन, मैंने शरीर जी, ओक संज्ञा में आना मुश्किल है, फिर भी ओक संज्ञा में एक बात है, ईमानदारी से अगर आत्मकल्याण करना हो और दूसरा कोई भी हेतु नहीं हो और हमको प्रत्यक्ष योग में कुछ असर पहुंचती हो तो भक्ति आ सकते हैं, लेकिन पहचान के बराबर तो नहीं आई, लेकिन आ सकती है। जिसको निष्काम भक्ति कहते हैं और उपकार वस्ता के कारण से हुई भक्ति बोलने में आती है कि हमारे आत्मा पर उपकार हुआ है इसलिए हमको भक्ति अंदर से आती है। अंदर से जो भक्ति आती है वो सही है, क्योंकि कुछ न कुछ असर पहुंची है हमको। और भक्ति विशेष होने से तन की आसक्ति छूटती है, मन की आसक्ति छूटती है और धन की आसक्ति भी छूटती है। तन माने शरीर, शरीर का कुछ भी हो, दिखाव से लेकर के, क्योंकि एक तो शरीर के एक दिखाव का साधन है कि हमारा दिखाव अच्छा होना चाहिए, चाहे कपड़ों से या कुछ भी साधनों से, वो बात हमको मोह करना भी नहीं और दूसरे को मोह होवे ऐसा दिखाव भी करना नहीं, दोनों बात है, आसक्ति में दोनों बात है, वो छूटता है। तो भक्ति चीज ऐसी है, मन की आसक्ति में क्या अनेक प्रकार के मन की जो इच्छाएं हैं, कुछ न कुछ पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, उसका भी त्याग होता है। मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा निरीक्षक तत्व, कैसा है ज्ञान तत्व, निरीक्षक तत्व हूं, उसको अच्छा इच्छा कैसे, क्यों इच्छा हुई, मैं ज्ञान को भुला हुआ हूं, निरीक्षक तत्व को भुला हुआ हूं। ज्ञान और इच्छा का मेल नहीं है, क्योंकि खुद निरीक्षक तत्व है और इच्छा और इच्छित पदार्थ का संयोग होने से ज्ञान को कुछ प्राप्ति होती नहीं, ज्ञान निर्लिप रहता है, ज्ञान को कुछ प्राप्ति होती ही नहीं, तो प्रयोग क्या करता है वो। इच्छा तो होती है, जब पूर्ण वितराग नहीं होता है तब तक इच्छाएं होती रहती है, इच्छा होती है, पूर्व कर्म से इच्छित पदार्थ का संयोग भी होता है पुण्य योग से, उस वक्त प्रयोग करता है कि ये इच्छा बेकार की हुई, ज्ञान को तो कुछ मिला नहीं, ज्ञान को मैंने मेरे को तो मुझे तो कुछ मिला नहीं, देखता है वो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अब तक जड़ कर्मों से मेरी इच्छा शांत नहीं हुई और इच्छित पदार्थ मिलने से भी वो रिक्त रही, वो रिक्त रिक्त मैंने खाली, वो आता है ना पूजा में, देव शास्त्र गुरु की पूजा में, रिक्त रही सो रिक्त रही, खाली खाली रहता है, वो प्रयोग चलता है। हाँ कुछ नहीं पड़ता, अगर मेरी आसक्ति बढ़ेगी तो मेरा परिभ्रमण बढ़ेगा, क्या मेरी इच्छाएं बढ़ती रहेगी, मेरा परिभ्रमण होता रहेगा, और धन की आसक्ति ये सुख बुद्धि के कारण से होती है। जिसको सुख बुद्धि चली जाती है इसमें धन की आसक्ति भी चली जाती है, और धन में अपनापन है मां तक धन की आसक्ति है। आधार बुद्धि, सुख बुद्धि और मेरा अपना, ये तीन धन के प्रति परिणाम को, परिणाम का खिंचाव ले आता है और वही परिभ्रमण का कारण बनता है। ये भक्ति को टूटने नहीं देता। तन मन धन की आसक्ति वाले को भक्ति नहीं होती, चाहे भक्ति का कैसा भी दिखाव हो उसको भक्ति नहीं होती, और भक्ति वाले को तन मन धन की आसक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति एक ऐसा एक तरफा झुकाव है। कैसा है? एक तरफा उतना झुकाव है कि दूसरी ओर का झुकाव है हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, ऐसा होता है। इसलिए जिसको ये होता है तो ये नहीं होता, ये होता है तो ये नहीं होता है। और वही ज्ञानी की आज्ञा का आराधन कर सकता है। बाकी तो ज्ञानी तो कहेंगे कि अपनत्व छोड़ दो, कहाँ से छोड़ेगा आसक्ति वाला, कहाँ से छोड़ेगा, नहीं छूटेगा। ज्ञानी के ऐसा करो, लेकिन जिसको आसक्ति हो कहाँ से छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो ज्ञानी की आज्ञा में वो नहीं रह सकता, और जहाँ तक आज्ञा में नहीं रहता ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। वो तो बिल्कुल साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिक बात है। अब कहते हैं कि यद्यपि ज्ञानी भक्ति नहीं चाहते, और चाहते तो ज्ञानी नहीं होते, तो स्पष्टीकरण देना जरूरी लगा। अगर नहीं कहते तो भी समझना चाहिए, लेकिन संसार के जीव इतने सरल नहीं होते संसार में जीव इतने सरल नहीं होते। अरे ज्ञानी अपनी भक्ति की बात करते हैं, अपनी आज्ञा में रहने की बात करते हैं, उनका भी कोई न कोई स्वार्थ होगा, क्या उसका भी कोई न कोई स्वार्थ होगा, सरलता से नहीं ले सकते बात। इसलिए कहते हैं, तो फिर कोई ज्ञानी की भक्ति करता है तो ज्ञानी को क्या लगता होगा? कोई अपनी भक्ति करे तो अच्छा ही लगे ना, है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको कोई लेना देना है ही नहीं, ज्ञान का ज्ञेय है, कोई यथार्थ रूप से भक्ति में आता है, दर्शन मुख की मंदता होती है तो ज्ञानी देखते हैं कि ठीक है, उसका कुछ न कुछ आत्मकल्याण की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उतना आएगा। बाकी वैसे कोई भक्ति करेगा, कोई देखा देखी से या ओक संगना से, तो बंधन लगेगा, क्या लगेगा, बंधन लगेगा। तो गोस्वारा पत्र में लिखा है कि हमने प्रत्यक्ष ज्ञानी की भक्ति की बात सुनाई, आपने इस बात का निशान हमको ही बनाया क्या और हमको हमने खुद ही हमको हमारा बंधन ऐसा कह करके बढ़ा दिया, तो हमको बंधन लगता है। लेकिन क्या करें, क्या वो हमारी समझ में नहीं आता। अब क्या करना हो हमारी समझ में नहीं, सूझता नहीं है कि क्या करें। क्या हम आपको धक्का दें या धक्का नहीं दें, क्या करें? भक्ति करने वाले को धक्का दे दें, धक्का दे करके निकाले, या धक्का नहीं दे, क्या करें? तो हमको सूझता नहीं है, ऐसा लिखा है। जिसको परम विवेक जागृत हुआ है वो लिखते हैं कि हमको सूझता नहीं है क्या करना है। देखो बहुत डेलिकेट क्वेश्चन हो जाता है। यद्यपि ज्ञानी भक्ति नहीं चाहते, परंतु मोक्षाभिलाषी को भक्ति किए बिना उपदेश परिणमित नहीं होता, और उपदेश का मनन और निधिध्यासन का हेतु नहीं होता। हिंदी में निधिध्यासन को निधिध्यासन ही लिखा है ना, है हिंदी ग्रंथ है, निधिध्यासन ही लिखा है। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञानी की भक्ति अवश्य करने योग्य है, ऐसा सत्पुरुष ने कहा है, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है। क्या कहते हैं कि सत्पुरुषों ने कहा है इसलिए वो कुछ चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञानी की भक्ति का निरूपण किया, स्थापित किया, वो भी मुमुक्षु के आत्मकल्याण के हेतु से, उनके हित के लिए कहा है, अपने कारण अपने हित के लिए नहीं कहा है। परंतु जो मोक्षाभिलाषी है कैसा है, मोक्षाभिलाषी की बात करते हैं। मुक्ति का इच्छुक, मुक्ति का इच्छुक मैंने दूसरी चीज का इच्छुक नहीं, ऐसा अनेकांत है उसमें। सिर्फ मुक्ति चाहिए और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, यानी जिसको मोक्ष चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए, और जिसको हरा भरा संसार चाहिए इसको मोक्ष नहीं चाहिए। वो धर्म करता है तो भी संसार के लिए करता है, मोक्ष के लिए नहीं करता है, इसलिए वो पुण्य के परिणाम करते हैं। संप्रदाय के लोग पुण्य के परिणाम में आकर्षित है। इसका क्या कारण है कि पुण्य का फल में संसार फलता है, और वो भी चाहते हैं कि हमारे संसार हरा भरा रह जाए। तो संप्रदाय ऐसा चलता है। ये ज्ञानी का मार्ग और तीर्थंकर देव का मार्ग नहीं है। तो कहते हैं कि मोक्षाभिलाषी को ज्ञानी की भक्ति हुए बिना, किए बिना मैंने हुए बिना, उसका उपदेश का परिणमन होने वाला है ही नहीं। भक्ति में आएगा तब परिणमन होने का अवकाश होगा, भक्ति में नहीं आएगा तब तो परिणमन होने का उसका अवकाश होगा नहीं, क्योंकि उसकी आसक्ति तन मन धन के प्रति रहेगी। भक्ति में उसकी आसक्ति है नहीं। जब परिणमन नहीं होता और मनन भी नहीं होगा, उसका पीछे जो मनन होना चाहिए वो भी नहीं होगा, और निधिध्यासन मैंने विजुअलाइज करना, जैसा उपदेश कहता है वैसा देखना, उसको कहते हैं निधिध्यासन। वो कुछ नहीं होता, मतलब परिणमन नहीं होता, मनन नहीं होता, निधिध्यासन नहीं होता। मैंने एक ज्ञानी का उपदेश सुनता है फिर भी बेकार जाता है और बेकार जाएगा। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञानी की भक्ति अवश्य करने योग्य है यथार्थ रूप से, यथार्थ रूप से नहीं लेकिन यथार्थ रूप से एक निष्ठा से तन मन धन की आसक्ति का त्याग हो करके, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है। ये बात सत्पुरुषों ने भी कही है और ये बात सर्वशास्त्र को मान्य है। आठवां वचनामृत आ गया, यह बात सर्वशास्त्र को मान्य है। कोई भी शास्त्र इस बात के विरुद्ध कोई बात कभी करेगा नहीं, सभी शास्त्र ने मान्य किया कि ऐसा ही होना चाहिए और तभी मुमुक्षु को मोक्षाभिलाषी को कुछ अंश में लाभ हो सकता है। आगे का जो विषय है वो कल के स्वाध्याय में लेंगे, आज समय समाप्त हो रहा है।